पिछले साल लगभग सभी नए प्रवासी जो ऑस्ट्रेलिया में आए वो मेलबर्न और सिडनी में आकर बस गए, और वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया अपनी कम होती हुई आबादी के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन सरकार प्रवासियों को नए स्थायी निवास यानी परमानेंट रेसिडेंसी देने की पेशकश कर रही है, लेकिन शर्तें ये कि वो 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय इलाकों में जाकर रहें। तो आज हमारे सेटलमेंट गाइड में कुछ इसी पर बात। फरवर्दीन दलेरी के लिए माइग्रेशन कोई नया शब्द नहीं है। वो ईरान में बहाई धार्मिक अल्पसंख्यक के हिस्से में पले बड़े हुए और भेदभाव का उन्होंने वहाँ सामना किया। इसके बाद में वो भारत में जाकर बस गए। अब जब ईरान में सरकार बदली तब इसके कारण उनका ईरानी पासपोर्ट अवैध हो गया और तब वो यहाँ मेलबर्न में चले आए। वो बताते हैं,
I came for Australian experience and the Australian experience was not possible in Melbourne because very quickly we were attracted to our own like-minded, same religion, same language group and that was the extent of the experience in Australia which was contained within a same cultural identity group. And I lived there for a few years in Melbourne and I felt that I want just something more, more different, more exciting, more real to the land. Then I moved out.
दलेरी को टाउन्सविल में रहते हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं। यहाँ पर वो टाउन्सविल इंटरकल्चरल सेंटर चलाते हैं और शहर के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करते हैं। वो बताते हैं कि कभी ये जगह यानी टाउन्सविल एक तरह से नस्लवादी थी, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो इससे भी बदतर हालात देख चुके थे। वो कहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो आखिरकार सभी दोस्त बन जाते हैं।
Those days, people would say Townsville was the center of Australian racism, but that didn't bother me because I come from the experience of far harsher and legitimized racism back in place where I come. So for me, it was an adventure. People are basically some of the best that you can get in the world. You know, you can be friend with them.
क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया देश के आर्थिक उत्पादन का 40% का हिस्सा है और 3 में से 1 श्रमिक को क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में रोजगार मिलता है। जब हम क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कैनबरा के बाहर के सभी छोटे बड़े शहर और क्षेत्र इस परिधि में आते हैं। हालांकि कई क्षेत्रीय इलाके अपनी कम होती आबादी के कारण अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष तो कर ही रहे हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई किसान स्टुअर्ट मैकअल्पाइन ने श्राइन ऑफ डलवनेनू को, जो कि एक भेड़ों और खेती के क्षेत्र के लिए जाना जाता था, उसे अपनी आंखों के सामने उम्र दराज होते समुदाय के साथ घटती भेड़ों की आबादी और खेती के महत्व को कम होते हुए देखा है। 2010 में उन्होंने एक क्षेत्रीय पुनरुत्थान परियोजना शुरू करने का विचार किया और इसके लिए उन्हें स्थानीय काउंसिल से मजबूत समर्थन मिला। वो बताते हैं,
The population has been in decline and the numbers in the school were declining to a point where it was probably evident that the numbers weren't going to sustain keeping that school open. So initially it was instigated to try and bring people back into our little community and bolster the population to keep the primary school going.
अब पर्थ के 263 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के लिए प्रवासियों को आकर्षित करना कोई आसान काम तो नहीं था। स्थानीय स्कूल को बचाने के लिए मैकअल्पाइन के पास बहुत कोई साधन या विकल्प भी नहीं थे।
Which meant that for me to attract workers onto the farm or future generations, then, you know, this is a 70-kilometre direct route to the nearest primary school. In fact, they closed another school down at the same time. So there's a distance of 105 kilometres between primary schools, between Perindra and Delonghi, which is obviously not conducive to attracting young people back into the ag industry.
मैकअल्पाइन की अध्यक्षता में रीजनल रीपॉपुलेशन एडवाइजरी कमेटी को डबलिनों की आबादी को काफ़ी हद तक बढ़ाने में कई साल लग गए। उन्हें अंग्रेजी कक्षाएं चलाने के साथ साथ रहने के लिए आवास की समस्याओं को हल करके भाषा की बाधाओं को भी दूर करना था। धीरे धीरे परिवारों में वृद्धि हुई, सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और फिर उसका परिणाम तो बेहद भाव विभोर करने वाला था।
We sort of started having families coming out and integrating into the school and just basically snowballed. So you know, we've seen increases of up to 15%. Even though we lost the little school, that was only 12 students at the time. We've seen the population in the Dalong New School basically double from sort of 120 odd to sort of 220 odd. And now we're starting to see them integrate into the community and the sporting and sort of some of the service stuff as well. I think we've very close, if haven't just surpassed nearly 100 of these people becoming Australian citizens now as well.
माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ माहिर मोमेंट भीड़भाड़ वाले शहरों में नए आए प्रवासियों को रीजनल क्षेत्रों के साथ जोड़ने में एक लॉजिकल समाधान देखते हैं। वो रीजनल अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया आरओए नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये संस्था रीजनल क्षेत्रों में नौकरी करने और वहाँ प्रवासियों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान कराती है।
When they arrive in Australia, about 80% of them settle in big cities. On average, I would say the clients that we are currently working with would have been living in big cities for 3 to 5 years, and still they haven't found employment in their own field or haven't found employment at all. These are the people who are very keen to go to regional Australia to move there permanently and make it their own home.
2011 की जनगणना से पता चलता है कि महानगरीय क्षेत्रों के बाहर कम प्रतिस्पर्धा के कारण लोग जितना अधिक बड़े शहरों से दूर जाते हैं उतना ही उनके नौकरी में होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए उस वर्ष में यानी 2011 में शहरों में काम करने वाले प्रवासियों की संख्या 61.3% थी और उसी के मुकाबले दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे विदेशी मूल निवासियों की संख्या 78% थी। नाइजीरिया में जन्मे सूरज अदबेयो ओपाटकुन ने मैक्वेरी विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान में छात्रवृत्ति पूरी की थी। इसके बावजूद भी वो अपने परिवार जिसमें कि 5 लोग हैं उनके लालन पालन के लिए एक स्थिर स्थायी नौकरी खोजने के लिए कई वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे और तब ओपाटकुन को क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही प्रयास में एक मीट इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस रीजनल नौकरी की प्रक्रिया तो बहुत ही आसान थी जबकि सिडनी में नौकरी ढूंढते हुए उन्हें बहुत कठिनाइयां आ रही थी। वो बताते हैं,
very very hard. It's been a very nasty experience as a graduate, and for more than 3 years I've been looking for a stable work, and that's not been realistic. I've not gotten anyone until this one.
ROAK yani ki Regional Opportunities Australia ke grahak jo hain wo pravasi hain aur haal hi ke graduates hain और इसके साथ ही कुछ विदेशी प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर जिनके पास में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है और जिन्हें शहरों में मेल खाती नौकरी नहीं मिल पाई है। मोमेंट का कहना है कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया में लोगों को स्थानांतरित करने में और बेहतर पारंपरिक परिणामों के लिए कई मापदंडों को पूरा करना होता है। स्वास्थ्य है, स्कूल्स हैं, नौकरियों आदि का होना, और साथ ही ये भी आवश्यक होता है कि स्थानीय लोगों में वो घुल मिल जाएं।
We look into the health system, we look into schools, availability of jobs and small businesses, how ready the community is to welcome these newcomers, because it's very important that when people move to new areas that locals actually embrace them and work with them. So there is a very diverse range of things that we consider before we identify an area as what we call right and ripe regional area to which we place people.
35 साल के आंकड़ों के आधार पर नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ डेमोग्राफी ने पाया कि रीजनल क्षेत्रों में बसे 60% से भी अधिक नए प्रवासियों ने 5 साल के अंदर ही बड़े शहरों का रुख कर लिया। अब फरवर्दीन दिलेरी कहते हैं कि ये एक वो प्रवृत्ति है जिसे बदला जा सकता है। वो एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम यानी यूथ लीडरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और इसमें वो टाउन्सविल में जन्मे पार्टिसिपेंट्स और हाल ही में आए हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को एक साथ एक ही स्तर पर लेकर आते हैं। दलेरी का मानना है कि सफल एकीकरण का अर्थ है कि नकारात्मक मीडिया कवरेज से बचा जाए और मतभेदों को हटाते हुए अपनत्व दिखाया जाए और एक दूसरे की बात समझी जाए।
Trust the system, trust the community, and accept Australians for who they are and connect with them. Because unless we shake a helpful and friendly hand, unless we step out, we cannot expect people who are being terrified by the media come out and hug everybody.
Regional Australia के कुछ सबसे वंचित समुदायों की चुनौती के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक SBS reality series Struggle Street देखें। स्ट्रगल स्ट्रीट के सीजन 3 का प्रीमियर बुधवार 9 अक्टूबर को रात 8:30 बजे SBS पर होगा और ये साप्ताहिक सीरीज हर बुधवार को जारी रहेगी। प्रसारण के बाद एपिसोड्स SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम किए जा सकेंगे यानी वहां पर ये मिल सकेंगे।